অনুবাদ এবং তার দেশে প্রভুপাদকে করা, কিন্তু উনকে কুছ সম্বন্ধী কংসকে ইশারে পর চলনে লগে ওর উনকি নৌকরি করনে লগে। জব উগ্রসেন কা পুত্র কংস দেবকী কে ছ পুত্র কা আবদ্ধ কর চুকা, তো দেবকী কে গর্ভ মে কৃষ্ণ কা স্বাংশ প্রবিষ্ট হুয়া, জিসে উনমে কোই সুখ কি কবি সুখ কি তো কবি দুঃখ কি বৃদ্ধি হতি। ইহ স্বাংশ মহান মুনিয় দ্বারা অনন্ত নাম সে জানা যাতা হ্যায় ওর কৃষ্ণ কে দ্বিতীয় চতুর্বিহ সে সম্বন্ধিত হে। ওম অজ্ঞানন্তমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্য মনোহিষ্টম স্থাপিতম যেন ভূতলে স্বয়ং রূপকদানহং দদাতি স্বপদান্তিকম। বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলম শ্রীগুরোন্বৈষ্ণবাংশ শ্রীরূপম সাগ্রজাতম সহগণম রঘুনাথম নিতম তম সজীবম সাদ্বৈতম সারভূতম পরিজনসহিতম কৃষ্ণচৈতন্যদেবম। শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণপাদাম সহগণরিতা শ্রী বিশাখাপত্তনশ নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে সারস্বতীদেবী গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণী। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 কৃষ্ণ। তো ইসমে কহা গয়া হতেষু ষট্সু বালেষু দেবক্যা উগ্রসেনিনা। কথা সব আপ বহুত অচ্ছি তরহ সে জানতে হ্যায়, সবই আপ কৃষ্ণ ভক্ত হ্যায়। ভগবান দেবকী কে ওর বাসুদেব কে ওহা জন্ম লেনে কে লিয়ে সবসে পহলে ব্রহ্মাদি দেবতাওঁ কো সূচনা প্রাপ্ত হুয়া, উসকে বাদ কংসাদি রাক্ষস কো ভি পতা চল গয়া, সবকো পতা চল গয়া। জেসে পতা চলা দেবকী কে শাদি সে লে করকে ক্যা ঘটনা হুয়া বড়ে বিস্তার সে আপ সুনেঙ্গে আগে চল করকে। আব ইহাঁ কহতে হ্যায় কি এক এক করকে এক জন্ম হতা হ্যায় কংস উসকো মারতা হ্যায়, ফির দুসরা জন্ম হতা হ্যায় ফির উসকো মারতা হ্যায়, কিসি এক কে ছোড়া নহিঁ। সৎসু বালেসু এক এক করকে ছ পুত্রকো দেবকী কা কংস নে বদ্ধ কর দিয়া। কসম খায়া তা আট তক মারে, আঠমা পুত্র মারনে কে বাদ জেল সে ছোড় দে, ওই প্রজেক্ট থা উসকা। আব এক এক করকে মার রহা থা, ছ মরনে কে বাদ মে যে সাতওয়া গর্ভ আয়া, দেবকী মাতা তো উনকা দুঃখ কা ক্যা কোই পার হি নহিঁ। ইয়ে দিব্য দম্পতি যে হোনে বালে ভগবান কে শ্রী মাতা পিতা হোঙ্গে, উনকা ভি ইতনি দুঃখ, ও তো কবি কবি মূর্ছিত হোকর কে উঠতি থি সন্তান বদ্ধ হোনে কে বাদ, ও বিলাপ করতে হুয়ে কহতি থি পত্নী ইয়ে হতভাগ্য আত্মা ক্যুঁ মরে জেসে মা কে গর্ভ মে আতা, মরনে কে লিয়ে আতা, উনকো ওর কোই নহিঁ, মা নহিঁ মিলতা ক্যা, মেরে পাস আতা হ্যায় মরতে হি জাতা। তো এসে এসে ছয় বালক কে মৃত্যু হুয়া, বধ হুয়া। উসকে বাদ মে জো সপ্তম গর্ভ হুয়া তো মাতা দেবকী আব ইস বার হর্ষিত হুই, অভি তক তো রতি রতি শাদি কে বিদায় দিন সে হি মহা দুঃখ দুঃখ রোনা মূর্ছিত পাগলপন সব কিছু হাতি নি লগা, লেকিন জব সাতওয়া গর্ভ হুয়া বলস হর্ষ শোক বিবর্ধন, উনকে হর্ষবর্ধন হোনে লগা ক্যুঁ না বৈষ্ণবম ধাম। ইয়ে যে সাতওয়া গর্ভ থা ইয়ে কোই ওর কোই নহিঁ থা, বৈষ্ণবম ধামম ও এইসে বৈষ্ণবকে ধাম থা, জিনকু পণ্ডিত লোকনে জানকার লোকনে অনন্তম প্রচক্ষতে, উনকো অনন্ত করকে কহতে হ্যায়, ওর কোই নহিঁ থে সাক্ষাৎ অনন্ত থে। আব अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं आना था? सप्तम वैष्णव धाम, वैष्णव धाम के अर्थ है जिनके अंग अंग विष्णुमय है या कृष्णमय है, जो विष्णु के आधारभूत है, जो विष्णु के प्रथम सेवक है, वो है। तो सातवां गर्भ में माता देवकी के गर्भ में आए, आते ही सातवां गर्भ प्रकट होते ही देवी की ओर वसुदेव पुलकित होने लगे, हर्षित होने लगे और साथ साथ शोक भी करने लगे। शोक विवर्धन क्यों? क्योंकि इतने सुंदर हंस लग रहा है कि कोई महापुरुष तो जरूर आ रहा है, लेकिन कंस उसको भी मार गए। कंस के भय के कारण शोक भी हो रहा था, लेकिन अभी गर्भ के अंदर कोई आया पता नहीं, एक एक से मरी रहे, लेकिन फिर भी आनंद बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि साक्षात चिन्मय आनंद घन जो अंदर बैठे ना, जो अंदर आनंद है उसका प्रकाश तो बाहर निकल गए। तो इसलिए देवकी माता वस्तु में सब में आनंद भी प्रकाश हो रहा था, क्योंकि साक्षात आनंद घन घनवर्ती आनंद बैठे थे। अब विचार करना है क्यों आए, क्यों बैठे आकर के सेवन स्टेज में। तो क्योंकि भगवान आने वाले, कभी अगर आप भगवान को प्रकट कराना चाहते हैं, भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या उपाय है? भगवान कहते हैं मैं किसी उपाय से नहीं दिखाई पड़ता हूं, न वेदे न तपसा न ज्ञाने न चिज्जया, केवल भक्ति के द्वारा है, केवल भक्ति। जब भक्ति, भक्ति का जो विधान है, जो नवविधा प्रकार श्रवण कीर्तन आदि श्रवणाख्या भक्ति, वो जब तक नहीं होगा तब तक भगवान के पल्ले नहीं पड़े, भगवान दर्शन भगवान की साक्षात्कार नहीं। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान की शुद्धा भक्ति से ही भगवान विवश होकर आते हैं, और भक्ति कौन करता है? शुद्ध भक्ति भगवान के भक्त तो करते हैं। भगवान कहते हैं मैं आता हूं हर युग में, मारपीट करके धर्म स्थापना करके चला जाता हूं, लेकिन ये काम तो कोई भी कर सकता है, मैं किसी को फोन करूं कोई भी कर देगा। हमारे साधारण लोग अधिकारी थोड़े बहुत छोटे मोटे अधिकारी कोई काम कैसे तो वहीं से फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, काम हो जाता है। तो भगवान की क्या कमी है क्या? उनको फोन नहीं करना पड़ा, मैसेज नहीं पड़ेगा, इच्छा मात्र से हो जाएगा मर जाने से, प्रकृति के बस में, प्रकृति उनके इशारा से चलती है। तो हम सब प्रकृति के बद्ध प्राणी हैं, एक बार प्रकृति कई काम उठा दे, कुछ भी कर दे, एक साथ में थोक मर जाए सारे, धरती एक बार अपना शरीर हिला दे, बस खत्म स्वाहा। तो सुन क्या भगवान को जाना, लेकिन भगवान क्यों आते हैं? भगवान इसके लिए नहीं आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान स्वयं गीता में जो कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम, च माने भी अल्सो, जो दुष्कृतिना को मारना धर्म संस्कार करना ये तो अल्सो उसको भी कर लेता है, जब जाहिर है उसको भी कर लेता हूं, उसको भी कर लेता हूं, लेकिन आता हूं किस लिए? परित्राणाय साधु, साधु लोग के लिए आता हूं। जो आ ही रहा हूं दूसरे के तुम बुलाओ, आप कर लेता हूं, जब मैं जा रहा हूं द्वारका तो फिर लटरू दे देना। तो ऐसे तो भगवान बोलते हैं परित्राण करने के जो साधु लोग मुझे पुकारते हैं कि परम प्रेमी भक्त अगर भगवान को अड़ लाकर बैठ जाए, नहीं मैं तो आपको चाहता हूं, आप तो आना पड़ेगा, मैं तो आपके साथ खेलना चाहता हूं, आपको बेटा बनाना चाहता हूं, आपको पिता बनाना चाहता हूं, आपको मित्र बनाना चाहता हूं, तो भगवान विवश हो जाएंगे, उनका पास कोई चारा नहीं, आना ही पड़ेगा। और जब आएंगे तो बाकी सारे काम करके जाएंगे, जब आए जाएंगे तो इसी को बोलते हैं चार सदस्य की, बाकी सब काम तो मैं इसके लिए करता जो आ ही रहा, लेकिन आता हूं उन लोग के लिए। जब तक कोई ऐसे भक्त नहीं आएगा तो भगवान भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए सारे देवता सभी जानते हैं कि भगवान को प्रार्थना आने के लिए प्रार्थना करने से पहले भगवान के भक्तों के पास आना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं सुन पाएंगे। वैष्णवम धामम, समस्त वैष्णव जितने अभी जन्म लिए हैं जो होंगे, सभी का जो स्रोत है, समुदाय वैष्णवों का जो धाम है, वो जो है वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ सेवक, भगवान के ऐसे सेवा करते हैं कि कोई सेवा का अंत बाकी नहीं जाता, कुछ भी सेवा छूट नहीं जाता, इसलिए उनका नाम है शेष। सब कंप्लीट करते, शेष वन कंप्लीट, कंप्लीट अपने आप कर देते, कुछ भी बाकी नहीं रहता। भगवान कितने सेवा करेंगे, जितने करो, अनंत है, अनंत शेष है, सभी अकेला कर देंगे, करते भी हैं। तो ओ भगवान जब आएंगे, भगवान के सेवक तो आना ही पड़ेगा ना, जैसे कि बड़े आदमी आता है, पहले पायलटिंग उसका म्युनिसिपैलिटी एक्टिव हो जाता है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाते हैं, फिर है ना कि प्रोग्राम बनने से भगवान का प्रोग्राम बना, तो सबसे पहले कौन एक्टिव होता है, जैसे कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम बनेगा अभी आपके यहां आने के, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों, म्युनिसिपल सफाई करना शुरू होगा ना, रोड फोड़ सफाई करके, ब्लीचिंग पाउडर है ना, कचरा थोड़ी रहेगा, अरे प्रोग्राम बने देखो पूरा चकाचक कर देंगे, क्योंकि परिष्कार परिष्कृत जगह में ही महान लोग आते हैं। तो भगवान तो परमं पवित्रम, सबसे पवित्र है, वो आएंगे तो बिना साफ सुथरा कैसे आएंगे, तो इसीलिए ये छह पुत्र को मरना पड़ा, ये छह जो पुत्र को मरना पड़ा इसको कहते हैं, छह कौन थे, ये षडगर्भ, षडगर्भ वो थे मरीचि के पुत्र थे, मरीचि भगवान के मानस पुत्र थे, भगवान ब्रह्मा के, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे मरीचि, तो उनके लिए मन माना जाता है, मरीचि मन के अवतार, तो मन से मरीचि का जो छह पुत्र हुए मतलब मन का उपज है, मन से जो छह निकलते हैं बदमाश निकलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो सब मन के विकार, मानस के विकार, ये मरीचि रूपी मन से ये जो छह विकार पैदा हुए, मानसिक विकार, उन्होंने ब्रह्मा जी का बागदेवी के प्रति थोड़ा खेल उत्पन्न हुआ तो क्रिटिसाइज कर दी, उनको हंसने अपमान किए, ब्रह्मा जी ने गुस्सा करके उनको अभिशाप दे दिए, जाओ असुर बनो। तो षडगर्भ के नाम से असुर बन गए, जाकर सीधा असुर बने कहां, कालनिमि असुर का पुत्र हुए, असुर कालनिमि का पुत्र होकर जन्म हुए थे, कालनिमि बहुत बड़े असुर सेनापति था, तो देवताओं के साथ लड़ाई में छह मारे गए, तो मारे गए तो दोबारा फिर जन्म हुआ। देखिए एक बार महापुरुष का अपमान करने से कितने जन्म तक भोगना पड़ता, एक जन्म तो असुर बने, दोबारा जन्म पुराण हुआ, फिर जन्म होना पड़ा, दोबारा जब जन्म हुआ अब राक्षस राज हिरण्यकश्यप के पुत्र होकर जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप के बेटा होकर जन्म हुए, तो हिरण्यकश्यप गया तप करने के लिए, तप करके महाबलशाली बनकर के आया, तो उनके बेटे लोग अभी हो गए थे किशोर अवस्था में, तो बोले पिताश्री की हम भी करेंगे, तो भी पिता को बोले वो भी चल गए छेक छे, जाकर के मंदराचल में खूब तप किए, तब करके ब्रह्मा जी को बुलावाए, ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आए, आ करके सर्टिफिकेट दिखाए, बोले देखो हम भी डिग्री करके आए, पिताजी को दिखाए हम भी मंदिर से करके आए, तब ये देखो हम ब्रह्मा जी से, तब हिरण कश्यप सोच रहे थे कि अब खुश हो जाएगा, लेकिन वो तो क्रोधित हो गया, बड़ा गुस्सा किया, बोला बदमाश ये गलत परंपरा चलाएंगे क्या आप लोग, मैं साक्षात ईश्वर हूं, मुझे ईश्वर बनने के लिए, भगवान बनने के लिए ब्रह्मा को तपस्या करना पड़ता, बन गया तो फिर मुझे तपस्या सब करना चाहिए, आप जाकर फिर ब्रह्मा को तपस्या, ये क्या गड़बड़ है, मैं घर में बैठा हूं, तुम मेरे बेटे हो, मुझे बिना तपस्या के मैं वरदान ऐसे दे देता, फ्री में दे देता, तुम्हें इतने कठोर तप क्यों दिया ब्रह्मा को, लोग क्या समझ रहे, घर वाले तो देखो उनको नहीं पूछते, दूसरे को पूछते, वो क्या हिरण्यकश्यप भी अन्य देव पूजा नहीं करना चाहता था, वो भी भगवान को पूजा करना था, अपना भी भगवान मानता था, इसलिए वो भी स्टडी सही करना चाहता, तो इसलिए गुस्सा में आकर के उनके पुत्रों को उन्नवी मतलब त्याग करता था, साफ अभिशाप दे दिया उनको, गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे छोड़ कर जाए वहां को तपस्या करना, मैं वरदान संदेने में असमर्थ हूं क्या? हाँ, वैसे डांट करके बच्चों को त्याग दे दिया, उनका अभिशाप दे दिया, बोले जाओ तुम सुतल लोग को जाकर के सोते ही रहो, ना पिताजी कभी जगेंगे नहीं, सोते ही रहेंगे। नौ जब भी आपको पहले जन्म का पिता आएगा तब आप जगेंगे, वो मारेगा, तब मरने के बाद जगेंगे, आपका उद्धार होगा, आपका वध होगा आपके पूर्व जन्म के पिता के द्वारा। हिरण्यकशिपु उनको अभिशाप दे दिया, और हिरण्यकशिपु तो महान भागवत का सत्य है, उनके साथ तो छुटा नहीं होगा, तो सारे छह बेटे उनके सीधा चले गए स्लीपिंग बेड। स्लीपिंग बेड कहां सोने का रूम था? शुक्र लोक में जाकर के सोए, बस सोते ही रहे, सो के रहे। आप हिरण्यकशिपु के बाद तो पूरा करना था, इसलिए माया देवी ने उनको एक एक करके बुला करके देवकी का अंधर में डाला, और उनके पिताश्री जो कारणवी थे वही कंस होकर जन्म हुए हैं, तो उनके ब्रह्मावचन को सत्य करना था, तो कारणवी द्वारा एक एक करके बंधक रहा, ऐसे पहले से फिक्स था। तो बोलते हैं कि फिर भी कंस क्यों मारा? कहते हैं कि ये तो ब्रह्म साप था, लेकिन भगवत जन्म के प्रकरण में उसका आवश्यकता था कि भगवान जो परम पवित्र हैं उनको आना है, तो देवकी गर्भ को पूर्ण रूपेण पवित्र परिष्कार होना चाहिए, सब प्रकार भौतिक मैला कलमश नाश होना चाहिए, जो काम क्रोध लोभ जो मानसिक विकार है वो सब साफ होना चाहिए। जो छह विकार हैं, इस छह विकार के एक एक विकार के एक एक पुत्र हैं, तो मानसिक विकार जाएगा कैसे? हम उसको निकाल सकते हैं? कोई पुरुष है आपके मन से जो काम क्रोध लोग आप उठाकर फेंक सकते हैं? कोई उपाय है? एक ही उपाय से मर सकते हैं, छह के छह एक एक करके मर सकते हैं, एक ही अस्त्र है उनको मारने का उपाय, यही कहते हैं इसी प्रसंग में। क्या अस्त्र है? न उग्रसेनी, ना उग्रसेन का पुत्र जो कंस है वो तो कंस ही मारेगा, लेकिन कंस मतलब कहां बुलाएगा, कंस बढ़ा देकर किसी मरवाएंगे क्या? नहीं, कंस है साक्षात भय पर्सनिफाइड, साक्षात भय ही कंस है, भय मृत्यु रूप लेकर के कंस बना। तो ये मानसिक विकार को मारना हो तो केवल भय के द्वारा ही मार सकते हैं, बहुत भयभीत होना चाहिए। प्रभुपाद जी कभी कभी कहते थे कि मेरा एक ही कंसन है, मेरे संस्था मेरे जितने फॉलोअर हैं वो सबका मैं एक ही गड़बड़ी देखता हूं, क्या? दे आर नॉट फियरिंग सफिशियंट टू बी माया, जितने माया को डरना चाहिए वो डर नहीं रहे, है निकल जाते हैं, नशे में जाकर खत्म हो जाते। माया को जितने भयभीत करना चाहिए वो डर तो नहीं है, बोले यही सबसे गड़बड़ी, सफिशियंट भय होना चाहिए माया के, और वही भय ही हमके माया के विकार को मन के विकार हटा रहे मार देगा। तो इसलिए देवी की माता को भयभीत होना पड़ा इतने साल, और भय रूपी उनके भाई कंस, उनके भाई भय बन करके आया और एक एक विकार को मारा बंद किया, भय से ही उसका नाश होगा। जब हम डरेंगे बाप रे बाप काम से ये खतरनाक हो सकता है, वो डरेंगे बिल्कुल जाएंगे केयरफुल, क्रोध से रोग से और ठीक समझ लेंगे, इतने भयभीत रहेंगे तो बिल्कुल सावधान, तो भय ही उनको मार के खत्म होगा, फिर तो समझ लेंगे। तो इस प्रकार भय रूपी कंस के द्वारा छह मानसिक विकार को काम के तहत मार के साफ कर दिया गया, मार करते चला गया, लेकिन मरने के बाद जो डेड बॉडी पड़े रहते हैं पड़ते हैं, यहां कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, तो ये तो साफ करना पड़ेगा। तो पूरे क्लीनिंग करके साफ सुख, फिर भगवान आने के लिए सब आसन फासन लगाना है, आसन उपकरण कहां रहेंगे, किसी बेड लगेगा, किसी बाथरूम बाथरूम सब फिक्स करके ओके करके देना है। ये ओके करने का काम भगवान के सेवक है, वो ही बलवान, उनके साक्षात सेवक हैं, वो आए, इसलिए वो आए एडवांस, जिसे बोले फील्ड तैयार हो चुका है तो आए, सब नेसेसरी अलाइनमेंट करने के लिए। तो इसलिए सप्तम वैष्णव धामम, और जो वैष्णव लोग कौन होते हैं, वैष्णव का क्या परिचय है, जो भगवान के सेवक हैं, जिनके हृदय में, मन में, बुद्धि में, विचार में केवल भगवान की सेवा का ही एकमात्र उद्योग है, एकमात्र चेष्टा है, वही है वैष्णव। उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं श्री बलदेव जी, उन्होंने आए मां के गर्भ से, बोले भगवान यहीं आने का है तो पहले मैं जाके सुपर इंस्पेक्शन करके ओके करके सब ठीक ठाक करके दूं। तो उन्होंने आए, आकर के सारे सैया, आसन, पादुका, जो भी आवरण सब रेडी करके रखे, करके ओके किए। ओके करके अब भगवान को जल्दी पड़ा था, क्यों भगवान को जल्दी पड़ा था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम जग नाम निजनाथा नाम जोग मायाम समाधिशम। तो भगवान को जल्दी पड़ा था क्यों, क्यों जदुनाम जो जदुवंश के लोग हैं, निजनाथा नाम, वो तो आपने आदमी है, आपने लोग हैं, आपने लोगों के लिए कुछ कष्ट होता है तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, दौड़ कर आएंगे। बाकी लोगों के लिए ज्ञानी वानी देवता तपस्वी, उनको कितने कष्ट हो, कई 500,000 साल हो पड़े नहीं होती, ठीक है देखेंगे, पेंडिंग फाइल भगवान डाल देंगे, सही। जब देखेंगे आपने भागवत में हिरण्यकशिपु ने जो अत्याचार शुरू किया उनका, ब्रह्मा बलि से बलियान होकर के देवताओं को, लोकपालों को, सारे डिपार्टमेंट हेड को ऐसे मारा पीट किया, ऐसे सताया, सब ड्यूटी लगा रखा, इतने परेशान किया, बेचारे रो रो कर हद हो गए, हिरण्यकशिपु नहीं छोड़ रहा था, उनके शक्ति, उनके बल, उनके ओज, उनके प्रभाव सब छीन लिया, अकेले उनको खाने पीने भी नहीं दिया, यज्ञ भाग भी छीन कर खा जाता था। वो बेचारे इतने दयनीय अवस्था में आ चुके थे, कोई उपाय नहीं पाए, अंत में देखे बोले कोई हेल्प नहीं होगा, शरणम शरण्यम, केवल भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो भगवान धाम में सब नौकरी वाकरी घर द्वार छोड़कर भागे, आकर सब धाम में आकर भगवान के शरण में जाकर के विनिद्रा वायु हो जाना, खाना पीना सोन छोड़ करके केवल वायु आहार करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करने लगे, भगवान की आराधना करने, खूब तपस्या किए। तपस्या किए तो भगवान ने फोन करके बोल दिया, ठीक है मैं पता है मुझे, मैं आऊंगा, अब क्या करो सर, कब आएंगे, मर रहे हैं, हमने हिरण्य कशि बहुत पीट रहा, कब आएंगे सर, ना मत दर्शनम ही, मैं जब दर्शन दूंगा तब आपका काम बनेगा, आप कब दर्शन देंगे, दर्शन तो जब होगा तब होगा, आप लोग तपस्या कर रहे हैं ना, सर मर जाएंगे, कुछ करो, बहुत रोए रहे, तब बोले ज्यादा देर नहीं करूंगा, आ जाऊंगा, लेकिन जब मेरा प्रकट होगा तब जाकर काम होगा, आप बोल रहे हैं कब प्रकट होगा, कब प्रकट होगा, बोले मेरे प्रकट होने का जो दर्शन करने का विधि उसको करो, भक्ति करो। तो उन्होंने बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोले बोल दी थोड़ा और बता दीजिए, भगवान बोले देखो आप लोग के लिए मैं देख लिया सुन लिया आऊंगा, लेकिन जब तक मेरा भक्त का द्रोह होगा, भक्त का भी द्रोह होगा, तब मैं बैठूंगा ने भाग कर आऊंगा, आपको भगत कहां होगा, कब आएगा, बोले उसी का ही बेटा मेरा भगत होगा, उसी का बेटा के प्रति जो दुराचार करेगा, इस भक्त द्रोह को मैं सहन नहीं करूंगा, भाग कर जाऊंगा। आप लोगों के तो मार मार करके आपको बोलते हैं देवताओं के सो झुक तक देवताओं को मारपीट किया, उन्होंने इतनी तपस्या भी किए और भगवान दर्शन भी नहीं दिए, दर्शन के बाद तो बातचीत केवल शब्द से सुना दिया, आकाशवाणी की सुनाई नहीं, लेकिन प्रहलाद को जब कष्ट दिया, भगवान को दौड़कर आना क्या, खंभे से निकल पड़े, भक्तों की द्रोह देखकर तो भगवान कोई देखेंगे नहीं, ठिकाना है ये, कोई खंभा से निकल कर जागा है, तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, निकल पड़ेंगे कहीं से भी, लेकिन आप लोग कितने उपचार होते तो नहीं निकले, ये है। तो इस प्रकार जगनाम निजनाथानाम, वसुदेव देवकी आदि भगवान को जो आपने नाथ करके भगवान को जो मान लिया, जो केवल भगवान ही जिसके सर्वस्व है, उन्हीं के लिए जीवन धारण किए हैं, वो भगवान बोलते मुझे आपने निज नाथ जो मान लिया, उनके कंस भय देता है, कंसजम भयम मैं भी तो हमें जान गया, उनको मुझे बुलाना जरूरत नहीं है, मैं पूरा खबर रखता हूं, वीरता कंसजम भयम, कंस से भयभीत थे, मेरे जदलोक में माँ पिता बनने वाले हैं, लेकिन उससे भयभीत थे, तो इसलिए मैं आऊंगा जल्दी से, मुझे आना है। लेकिन सीट वैकेंसी नहीं है, क्यों? मुझे देखे घर में आना था, तो बड़े भाई साहब बैठे हुए, भाई साहब बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे? तो इसलिए भगवान अभी विश्वात्मा भगवान कंस के भय के जान करके कि वसुदेव जो कैसे कष्ट पा रहे हैं, सारे जदलोग कैसे कष्ट पा रहे हैं, ये जान करके बोले जोग माया को बुलाए, जोग माया समाधि का जोग माया को बुलाए, सख्या जोग माया देवी को बुला करके अड़ते भगवान ने बोले इमीडिएट समाधि सब शब्द से ही अर्थ होता है, मैंने ऐसे बोल देने बोले ठीक है आप जाकर काम कर दो, ऐसा नहीं, ऐसे ढीले ढले अड़ नहीं दिए, एक बार हाईकमांड अड़ दिए उसको सम्य कार्य सत्या, मैं इसी क्षण अब भी जाओ करके आना ही, दिस इज माई अर्डर, क्या करना है ना जा करके भाई साहब बैठे उनको उठा करके वहां डालो, मेरा सीट खाली कर मुझे जल्दी आना है, मुझे जल्दी आना है द्वारा जल्दी आना मुझे वो बैठे जाकर अब तक फिक्स कर रहे हैं सब काम, इसे थोड़ी चलेगा। तो क्या आदेश किए, बोले जा करके तुरंत गच्छ देवी व्रजन भद्रे लोक गोभी अलंकृतम, हे भद्रे हे देवी आप तुरंत ब्रज में जाओ, मैं अब तक जोगमया से ब्रज में नहीं गई, तो बोला कुछ तो पहचान पत्र दीजिए ब्रज कहां है किधर आइडेंटिफिकेशन, तो भगवान ब्रज के आइडेंटिफिकेशन देते हैं, क्या ब्रज की आइडेंटिटी क्या है, गोप गोभीर अलंकृतम, जिन स्थान का अलंकार जिन स्थान का भूषण है अलंकार है वो इस स्थान को ब्रज कहते हैं, ब्रज वो स्थान है जिस स्थान का अलंकार स्वरूप है गाय, गाय जिसका अलंकार है भूषण है, जिस भूषण को हमसे धारण करने से बड़ा सुंदर लगता है ना, अलंकार स्वरूप पहन लेंगे अलंकार आभरण पहने कितने सुंदर दिखते हैं, तो ब्रज की सुंदरता क्या है, गो माता गो ही ब्रज के आभरण है, ब्रज की सुंदरता है उसकी पहचान है, और गो भी मतलब गोपाल भी, चाहे गाय है ग्वाला भी है, चाहे गाय और ग्वाला होंगे यही मेरे ब्रज है, वहीं पे जाओ वहीं पे जाना, जाना मत जहां तो गाय ग्वाला है तो वो तो ऑटोमेटिकली सुंदर है, आप ही बोलते अलंकार है, तो फिर ना वो जितना सुंदर है उसको और जोलमा तुम जाकर लेते और सुंदरता बना, भगवान अर्पण कर दिए उसने, गच्छ देवी गजन भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, आप जल्दी वहां जाओ इस जगह पर जाकर क्या करो, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, वहां रोहिणी देवी है वसुदेव के एक पत्नी है जिनके नाम है रोहिणी, वो वहां है, वहां जाकर के नंद गोकुल में जो गोकुल है नंद महाराज के घर में रोहिणी देवी वसुदेव की पत्नी वहां जाकर के वहां जाओ उनके पास और जाकर के क्या करो, न देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तम सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, देवकी के गर्भ में संकर्षण शेष नाम का मेरा ही अंश है, मैं ही तो हूं, मेरा अंश रूप में भाई साहब बैठे हैं इधर जाकर के, और तुम जाओ उनको यहां से निकाल करके उनके मां के पास पहुंचा दो, उसमें से ये ध्वनित अर्थ होता है, भगवान कहते हैं कि शंकर जो अनंत है, मेरा जो दूसरा रूप है द्वितीय विग्रह शेष जो अनंत है बलराम है, उनके मां देवकी नहीं है, उनके मां तो कौन है, रोहिणी है, उनकी नित्य माता रोहिणी है, रोहिणी माता है देवकी माता, क्यों जाकर बैठे मां क्यों आए, नमाज के मैं आऊंगा इसलिए मेरा सेवक है, इसलिए मेरे व्यवस्था करने के लिए गए, लेकिन वो लेट कर दिया, हम जल्दी जाकर उनको बोलो आप उनको पहुंचा दो। यहां समाज से शब्द के ये भी ध्वनित अर्थ है कि ऐसा करना हमारे भाई साहब हैं, बड़े ध्यान से करना, ट्रांसफर ऐसा करना जाके कोई कष्ट ना हो, उनको बिल्कुल कष्ट ना हो और दोनों माता देव की भी कष्ट ना हो, क्योंकि बलराम जी के जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक पुत्र दो मां से, ऐसे कोई संभव है? हम देखते हैं एक मां से जुड़वा बेटा हो सकता है, लेकिन एक बेटा का जुड़वा मां होगी ऐसा कभी सुना? लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलराम जी के जब परिचय दिए बोले देवकी स्तन है रोहिणी स्तन है, बोले दो मां से एक बेटा हो। बोले परीक्षित महाराज बोले सर डाउट है सर, क्या ऑब्जेक्शन, क्या ऑब्जेक्शन नहीं, ये कैसे संभव है बिना शरीर परिवर्तन किए एक मां से एक साथ में दो मां के पुत्र होगा बिना शरीर बदला? एक शरीर में दो मां से पुत्र कैसे होगा? आज अगर बेटा मरेगा तो मां मरेगी, हो नहीं सकता है, कैसे संभव हो सकता है? तो इससे बताया कि संभव ऐसे हो सकता, भगवान कर सकते हैं ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेशन किए, सात महीना देवकी के गर्भ में रही रहे और वहां से उठा करके इस गर्भ को फिर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, रख दिया गया वहां, वहां सात महीना रहे, चतुर्दश महीना में आए दोनों मां के गर्भ में सात सात महीना रहते पूरा कोर्स करके आए। तो इस प्रकार बनाए, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके वर्णन आप सुनना चाहते हैं या कोई बलराम जी की लीला सुनना चाहते हैं? अब बलराम जी का जो परिचय है जिसमें कि सप्तम वैष्णव धाम, यहां भगवान स्वयं कहते हैं कि शेषाख्यम धाम मामकम, वो मेरा है धाम, वो जो शेष है वो मेरा धाम है, मैं ही हूं, कैसे हूं? तो बलराम जी की जो पहचान है वो कहते हैं सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहारा द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतार के अवतारी, सारे अवतार के मूल कारण जो कृष्ण है उन्हीं के द्वितीय विग्रह श्री बलराम, उन्हीं के द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दो है अभिन्न मात्र का, स्वरूप दोनों का एक ही है, एक स्वरूप दो है अभिन्न मात्र का, आद्य काय विभ कृष्ण लीलाया सह, आदि काय विभ से एक है उनके द्वितीय स्वरूप। तो कहते हैं फिर डिफरेंस क्या है, ना केवल कलर मात्र डिफरेंस है, ये काले और गोरे, ये सांवला, ये देख रहे हैं ना अल्टर में क्या अंतर है कृष्ण बलराम में, रंग मात्र भेद है, बाकी दोनों सेम एक ही व्यक्ति है, दो हो गए रंग अलग अलग हो गए, ब्राज में तो रंग भी समान हो गए यहां बाकी जगह अलग अलग हो गए रंग मात्र थे। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करना कृष्ण रासेवना, श्री बलराम जो है मूल संकर्षण है। आप संकर्षण जानते ना कौन है, संकर्षण नाम भगवान का नामकरण करेंगे तो मूल संकर्षण है, भगवान से जो प्रथम विस्तार होता है चतुर्व्यूह वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसमें जो प्रथम चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है वो बलराम जी मूल संकर्षण, वो भी बलराम से होते हैं, बलराम होते हैं बलराम से चतुर्व्यूह होता है, और चार व्यूह भी उन्हीं से बलराम से होते हैं। तो मूल संकर्षण बन करके भगवान को सेवा करते हैं, क्यों बने सेवा करते हैं, कैसे बने सेवा करते हैं, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करना कृष्ण रहस्यवान, पांच रूप लेकर के कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण कैसे पांच रूप में सेवा करते हैं, ना अपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, साक्षात बलराम तो कृष्ण के साथ रहते ही हमेशा, हमेशा उनके बाजू बाजू में घूमते हैं, हर समय उनके साथ रहते हैं, भैया बन करके कृष्ण जाकर सहाय में हमेशा बलराम रहते हैं, एक रूप तो बलराम रूप रहे, बाकी चार रूप
बोलते हैं
सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिका, सृष्टि लीला में बाकी चार शरीर धारण करते। भगवान जब सृष्टि करने के लिए इच्छा करते हैं, बलराम ही सृष्टि करवाते हैं, भगवान इच्छा मात्र करते हैं, बलराम जी करते हैं। मूल संकर्षण उन्होंने ही सृष्टि करने के लिए मूल रूप में तो रहेंगे शेष के रूप में, और फिर उनसे तीन पुरुष और निकलेंगे। एक तो संकर्षण है, तीन पुरुष कांड कसाई, गर्भद कसाई, क्षीरद कसाई, ये तीन पुरुष अवतार निकलकर सृष्टि करते हैं। कारण सही कारण बनेंगे, माया को दृष्टि डालेंगे, अनंत ब्रह्मांड निकलेगा, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के अधिपति बन करके गर्भ से निकलेंगे, गर्भ सागर ब्रह्मांड रखेंगे, फिर ब्रह्मांड के अंदर जीव गण आएंगे तो जीव के अधिपति बन के क्षीरोदक साई बनेंगे। इसे पूरे भगवान से लेकर के हम तक जितने फेज है, हर फेज में हर प्रकार के सृष्टि में क्रिएशन बलराम जी का हाथ, कहीं कहीं से उनको छोड़ नहीं सकते, एक अणु पर्यंत उन्हीं के हाथ, क्योंकि तीन पुरुष अवतार संकर्षण उसके ऊपर श्री बलराम, टोटल कृष्ण से लेकर के ये जीव कीटाणु अणु पर्यंत पूरे भगवान से लेकर एक पर्यंत सब अध्यात्म धाम भौतिक धाम सब टोटल सब उन्हीं का। इस प्रकार से पंचरूप होकर भगवान की प्रथम सेवक उन्होंने, प्रथम सेवक इसलिए पहले आए, सबसे पहले भगवान की जो मां होंगे उनके गर्भ में पहले आए, इंस्पेक्शन करके ओके करके यहां गए, फिर ब्रज में भगवान जाएंगे, ब्रज नंदन बन के ब्रज में भी सबसे पहले गए, आह्वान सुनने गए, उनका मां गएगा पहले और वो भी उनके साथ साथ उनको मां होंगे, उन्होंने गए, इसलिए ब्रज के राजा बलराम भगवान से पहले गए, जाकर सब सेटिंग करते हैं उन्होंने। तो अभी कैसे देवकी का पुत्र बने, क्यों बलराम बने, फिर रोहिणी के पुत्र कैसे बने, क्यों हुआ, कैसे बने, उसके बारे में अगर सुनना चाहेंगे तो अभी ना बच चुका है। अब क्या आगे, बलराम जी की लीला तो बहुत है, और मैं सोचा कि अभी जन्म जयंती है, जन्म के बारे में क्यों ना चर्चा किया जाए, लीला तो बहुत सुनते हैं, तो अभी लोग अभी तो मुझे कल बता रहे थे कभी सर्विस अभी इतने सब सेवा में भरपूर है, अगर मैं 9 से ज्यादा टाइम लूं और मैं बोलते रहूं वो सब उठ कर जाएंगे, मैं जानता, क्योंकि भगवान के सेवा के लिए भगवान को छोड़ करके भगवान के मां के घर में बलराम जी बैठ गए तो आप लोग कैसे नहीं बैठेंगे, आप सब सेवक है ना, आप लोग छोड़ के चले जाएंगे सब सेवा के लिए जाएंगे, तो इसलिए मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, फिर बाकी काल उसको आगे करेंगे। हाँ जी,
हरे कृष्ण महाराज, कृष्ण और बलराम में कितने महीने का डिफरेंस है,
कितने
कितना दिन छोटे बड़े हैं,
15 दिन का
संभव है,
और बलराम जयंती से कृष्ण जन्म चाहिए कितना, हर साल करते हैं कृष्ण पुजारी है बता, बलराम जयंती कृष्ण जयंती कितना है, आप सभी करते हैं ना, अभी 29 तारीख होगा, फिर 5 तारीख कितना देंगे,
दूसरा डर, ये सुभद्रा किसकी बेटी है, सुभद्रा किसकी बेटी है,
देवकी की बेटी है,
कृष्ण के बाद
छोटी है ना, बड़ी बड़ी बाद हमेशा छोटी होगा ना। हाँ जी,
हरे कृष्ण,
बोलिए सुनाई पड़ता
है, हरे बोलो, हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद सुंदर बलराम करने के लिए, और मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि श्लोक के अंदर आया था हर्ष शोक, और आपने कहा कि हर्ष इसलिए हुआ कि क्योंकि साक्षात भगवान आए उनके गर्भ के अंदर, परंतु शोक का कारण नहीं बताया कि शोक क्यों।
शोक का कारण बताया ना कि इतना बढ़िया पुत्र होगा और कंस मारेगा, भावी मृत्यु के आशा से दुख हो रहा है, शोक हो रहा है ना। आपको कोई 2 लाख रुपए इनाम देगा, वो मन बोल देगा किसी चोरी हो जाएगा, छीन कर लिया जाएगा, तब मजा लगेगा, कहा दे रहे छीन कर देना है तो ही आनंदित होंगे और दुखी भी होंगे, रहने वाला है नहीं कंस आगे मार दे, कंस जम्भ है। हाँ जी
हरे कृष्ण, मैंने बताया कि कृष्ण बलराम में केवल रंग का भेद है।
हाँ जी,
फिर हमने बोला कि ब्रज में तो रंग का भेद भी नहीं है।
हाँ,
ये समझ नहीं आया मतलब।
अच्छा, वो सुनना था आप कल कुछ प्रश्न विजित करना है एक साथ साथ में, साथ साथ में दो तीन और उसके बाद में करें ना, एक साथ में करें ओके, सारे प्रश्न एक साथ में कर लीजिए, फिर एक साथ में बोलिए
जो महाराज। ये सर अब जैसे आपने बताया था शास्त्र में पढ़ते हैं लोग कि बलराम से चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह में बताया जाता है संकर्षण ये बलराम के ही रूप हैं, और आगे जाके देखते हैं कि भगवान बलराम जी को अनंत शेष बताया जाता है, भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में प्रकट तीन अलग, तो ये कैसे समझेगी, ये कहा जाता है कि बलराम से सब कुछ है, सारे विष्णु है सब, बोलते हैं कि फिर वासुदेव कृष्ण के समान है, फिर मतलब ये
आप समझना चाहते हैं उसको।
हाँ हाँ,
तो ये समझ लीजिए क्या समझ नहीं सकता। ओके, आपका प्रश्न उनका प्रश्न था बाजू में, ओके
okay. हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि भय से 6 वेग कैसे उनका शमन होता है, थोड़ा महाराज विस्तार से बताएंगे।
विस्तार के लिए अभी समय विस्तार नहीं हो रहा, आप केवल मैं इतना छोटा सा क्रीम शब्द बता सकता हूँ, आप जो 6 विकार है ना काम को लोग जो जानते हैं उनको आप भय कीजिए सचमुच, फिर देखिए कैसे आप रिएक्शन होता है ना, प्रैक्टिकल करके
देखिए। बहुत धन्यवाद महाराज, काफी प्रश्न तो निकल के भी आए, और एक प्रश्न और था महाराज कि जैसे हम यहाँ पर भी जैसे हम सुनते हैं कि बलराम जी वहाँ के सबसे बड़े सेवक हैं, वहाँ के पहले विस्तार हैं, फिर हम देखते हैं कि भागवतम में आता राधा रानी गोवर्धन को भी कहती है हरिदास सर, उनको भी सबसे बड़ा सेवक कहती है, और शायद अगर मैं सही हूँ मुझे जितना याद है कि बृहद अमृत में नारद गोप कुमार देखते हैं तो अल्टीमेट राधा रानी तक को सबसे बड़े सेवक मानते हैं, तो कैसे समझे महाराज की इसमें क्या भेद है यार?
बहुत अच्छा, तो दोनों प्रश्न का उत्तर दो, समय है ना नहीं चलेगा, अथॉरिटी क्या बोलते और भी कुछ नहीं क्या? ओके, आपका भी
हरे कृष्ण, धन्यवाद महाराज। महाराज आप बता रहे थे जैसे जब देवकी के पुत्र 6 पुत्र हुए जो मरीची से फिर राक्षसों के माध्यम से उनके घर में आए, हम देखते हैं कि बाद की जो लीला है जब तो देवकी जो है कृष्ण से उन्हीं पुत्रों को वापस मंगवाती है, तो उनसे ऐसा क्या उनका था कि उनकी उनके
पर आते हैं, ये जाओ वो जो फिर गिड़गिड़ा जा करके पैर पड़े किन से आपको उद्धार होगा, भगवान के संग से उद्धार होगा ना, भगवान से भगवान लाएंगे देवी का स्नान पिएंगे तब जाएंगे हम लोग। दो क्वेश्चन पेंडिंग है अभी बोलिए,
आवश्यकता है कि इनको जैसे कि बताते हैं काम क्रोध सहज करने आदि की थी कि इनको भी भगवान की से डोकटेल कर सकते हैं, तो डोकटेल करना है कि इनको मारता है मुझे ज्यादा करता है,
तो भगवान की सेवा में लगा दे तो उसने मर गए समझो, है ना। आप भगवान की सेवा करने के लिए तो घर वाले बोलते हैं तो गया मर, घर के कई काम तो नहीं, कई काम रहते हैं आपको परिवार वाले क्या सोचते हैं, ऐसे ही ना गोत्र शरीर से परिवर्तन करके फिर भगवान को बुलाते
हैं, सेवा में लगकर ही वो जाता है।
हाँ भगवान की सेवा में लगाना
ऐसे ऐसे शरीर हो,
लेकिन सबसे पहले डरना पड़ेगा फिर उसको मनना पड़ेगा। अच्छा और कोई नहीं ना प्रश्न? अच्छा आपको नहीं,
महीना देवकी के घर में भागवत से आप पता है या मतलब?
हाँ भागवत से है, भागवत के टीका में।
ओके भारत
ओके आपका प्रश्न।
हरे कृष्ण, जैसे आप बताएं कि भगवान जी पहले आते हैं भगवान से और इसके लिए की व्यवस्था करते हैं, इसे रामलीला में बलराम जी पहले आते हैं और बाद में?
रामलीला में राम ही तो राम है, वही बलराम ही तो राम है ना,
पूरी व्यवस्था
राम ही चतुर्भुज है, वही चार भाई एक साथ में। तो आपका था कि दोनों वो चले गए सर? नहीं नहीं वो जो क्वेश्चन वाले थे जो बोले थे रंग रंग भेद आप ही बताते, रंग भेद वाला तो ब्रज में रंग भेद इसलिए है, ब्रज में दोनों अलग अलग थे, लेकिन एक बार खेलते खेलते सब बालक लीला में जो कर रहे थे रामे, तो सारे मिलकर के कृष्ण तो कृष्ण ही है, छोटे शख्स हैं और बड़े नटखट थे, इतने नटखट सबको परेशान करके रखा था, सबके परेशानी करता था, झगड़ता था, सब लड़ता था सबके साथ, तो परेशानी होकर सब बोले बोले तू नंद पुत्र नहीं है, नंद सर लड़का नहीं हो सकता, क्यों नहीं, मैं हूं, मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, मैया का बाबा का बाबा माया के बेटा हूं, कैसे नहीं हूं, बोले आप नहीं हो, बोले कैसे नहीं, बोले अगर तू बेटा होता तो तेरे रूप कैसे कैसे होता, नंद बाबा कितने गोरे तक तक है, जसदा माई कितने गोरी है, तू ये काला कलर तो कैसे हो गया है, सही है वो कृष्ण को समझ में आया, सही बात है बिल्कुल रंग भेद है, बोले ये बलराम सही है वो उनके लिए सही है उनके रंग के, आप नहीं ना, मैं कहां जा रहा ना, वो जो भील ग्राम है ना जो आदिवासी ग्राम है उनसे एक हांडी दही दे करके उनसे एक्सचेंज किया तो वहां का है, यहां का नहीं, तो भगवान को इतने अपमान हो, सारे लड़कों ने उनको ताली बजाकर इसे बोल दी, तो यहां के नहीं, तो दौड़ते दौड़ते आई श्री शक्ति सिद्ध आके दशरथ मां के पास हैवी कंप्लेन, मैया मैं अरे क्यों रो रहा है, क्या बात, रोते ही जा रहे हैं रोते ही जा रहे, क्या 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 बताओ ना, पहले बताओ मैं अभी समझ में आता है, मुझे कौन डांटता है बलराम डांटता, अभी समझ तू मेरा लड़का कौन बोलता है, तू मुझे बता तू मेरा मैया है कि नहीं, बाबा मेरा बाबा कहे ना मैया मेरा मैया तू मैया है कि नहीं, मैं क्यों कौन बोलता है, यदि तुम मैं तेरा बेटा हूं तो मैं क्यों कला है बड़ा क्यों बोला, जसदा माने तो बोले मैं गयों का गाय के शपथ लेकर कहती हूं, गोरदस के शपथ लेकर कहती हूं मैं तेरा माया है तू मेरा पुत्र है तू मेरा पुत्र है मैं तेरा माया, बोला नहीं जब है तो फिर मैं अलग क्यों, मेरा रंग बदल के उनका रंग क्यों कला नहीं हुआ, मुझे क्यों कला क्यों करे, तो बोले अच्छा उन्होंने हाँ वो भी मुझे कह रहे, तो मैया बोले बलराम को लगा तू भी कला हो, जब तक यहां रहेंगे तुम कला रहो आपस में झगड़ो मत, तो इसलिए दोनों भाई ब्रज में कला है ना, नहले घर में झगड़ा होता है, इसलिए मेरे को अपने कब करता है। और आपका था क्या कि हा? कि अगर भगवान के सेवक जब हम बलराम के सबसे प्रथम सेवक मानेंगे तो गोवर्धन जी हरिदास वरी है, और दो भी हरिदास वरी है, फिर राधारानी भी है, ये सब देखिए ये सब हरि के दास में श्रेष्ठ है, बलराम जी हरि के दास नहीं हरि ही है, कौन है हरि ही है, हरि कल मेकअप करके आ गए रविदास भी हो गए, हरि जब दास का काम करेंगे तो हरिदास वरी नहीं होंगे, तो हरि के बारे में पुष्टि में आएंगे, ओके इसलिए हरि के बारे में करेंगे। ऐसा नहीं। और कुछ श्री बलराम भगवान की, स्वामी भक्तवृंद की।